नमस्कार, क्विंट हिंदी की खास पॉडकास्ट सर्विस में आपका स्वागत है। उर्दू के सबसे विवादित लेखक रहे सादत हसन अली मंटो की जिंदगी के कुछ दिलचस्प और अनसुने किस्सों को बयां कर रहे हैं विनय सुल्तान। सादत हसन अली मंटो ने एक बार खुद के बारे में कहा था, ऐसा होना मुमकिन है कि सादत हसन मर जाए और मंटो जिंदा रहे, और इत्तेफाक देखिए कि ऐसा हो गया। मंटो की हजारों छवियां हैं। सकीना की खुली सलवार के जरिए हमारी तहजीब की धज्जियां उड़ा मंटो जो बड़ी अकड़ के साथ कहता था, मैं सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी, मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि ये मेरा काम नहीं, दर्जियों का काम है। या फिर टोबा टेक सिंह की तरह नो मैंस लैंड पर खड़ा होकर बदहवासी की हालत में विभाजन के कत्लोगारत को देखता मंटो। जिस मंटो पर फिल्म बनी है, किसी दौर में मंटो इसी शहर की गलियों में आवारा की तरह भटका करते थे। वो खुद को चलता फिरता बॉम्बे कहते थे। विभाजन के बाद उन्हें बॉम्बे छोड़ना पड़ा। मंटो की कलम ने इतिहास के इस नाजुक मौके को कुछ इस तरह दर्ज किया, मेरे लिए यह तय करना नामुमकिन हो गया है कि दोनों मुल्कों में अब मेरा मुल्क कौन सा है। बड़ी बेरहमी के साथ हर रोज जो खून बहाया जा रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब आजाद हो गए हैं, लेकिन क्या गुलामी का वजूद खत्म हो गया है? जब हम गुलाम थे तो आजादी के सपने देख सकते थे, लेकिन अब हम आजाद हो गए हैं तब हमारे सपने किसके लिए होंगे? मंटो पाकिस्तान छोड़कर चले तो गए थे, लेकिन उनका बॉम्बे उनके साथ ही नत्थी होकर चला गया था। बॉम्बे छोड़ने के करीब पौने चार साल बाद लाहौर की एक साहित्यिक महफिल में मंटो अपने बारे में ये कहते हुए पाए गए कि वो खुद चलता फिरता बॉम्बे हैं। बाद में उन्होंने मीना बाजार नाम से एक किताब लिखी। इसमें उन्होंने अशोक कुमार, नूरजहां, नरगिस जैसे चोटी के सितारों के साथ बिताए वक्त का जिक्र किया है, जब अपनी माँ को लेकर मंटो के घर पहुंच गई नरगिस। किस्सा तब का है जब मंटो फिल्मिस्तान स्टूडियो में काम किया करते थे और अपनी बीवी साफिया और दो सालियों के साथ बायकला चौक के पास रहा करते थे। जिस समय वो अपने दफ्तर में हुआ करते थे, पीछे से उनकी बीवी और दोनों सालियां मजे के लिए अलग अलग फिल्मी हस्तियों के घर फोन लगाकर खूब बातें किया करती। इस दौरान वो अपनी पहचान छुपाए रहती। ऐसे ही मजे मजे में उन्होंने एक बार नरगिस के यहां फोन मिला दिया। मंटो की सालियां और नरगिस हम उम्र थीं। तीनों में खूब पटरी बैठने लगी। बातचीत का सिलसिला मुलाकात के नुक्ते पर आकर ठहर गया। मंटो की सालियों ने नरगिस को घर आने का न्योता दिया। उस समय तक फिल्म में काम करने वाली औरतों को बुरी नजर से देखा जाता था। ऊपर से नरगिस की मां जद्दनबाई बॉम्बे की मशहूर तवायफ रही थी। ये वो तथ्य था जो अच्छे घर की औरतों को नरगिस की सोहबत से रोकता था। मंटो को उनकी मुलाकात के बारे में मालूम न चल जाए, इसलिए साफिया और उनकी बहनों ने नरगिस को दोपहर में अपने घर बुलाया था। इत्तफाकन मंटो उसी रोज फिल्मिस्तान से दोपहर में ही घर लौट आए। इधर नरगिस अपनी मां के साथ एक लंबी सी कार में बायकला चौक पर खड़ी थी। उधर मंटो की आमद की वजह से साफिया अपने घर में घबराई सी खड़ी थी। मंटो को जब पूरे मामले की जानकारी मिली तो खुद नरगिस को लेने बायकला चौक पहुंच गए। ये नरगिस की उनके घर में पहली आमद थी। इसके बाद वो कभी भी उनके घर आ धमकती। जिस तरह नरगिस तकदीर, हुमायूं और रामायणी जैसी फिल्मों की वजह से काफी नाम कमा चुकी थी, वो मंटो की नजर में कच्ची अदाकारा थी। उनकी अदाकारी के बारे में जिक्र करते हुए मंटो लिखते हैं, नरगिस की अदाकारी के बारे में मेरा ख्याल बिल्कुल अलग था। वो जज्बात और एहसास को ठीक तरीके से उकेर नहीं पाती थीं। मोहब्बत की नब्ज किस तरह चलती है, ये अनाड़ी उंगलियां कैसे महसूस कर सकती थीं? इश्क की दौड़ में थककर हांफना और स्कूल की दौड़ में थककर सांस फूलना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज थी। मेरा ख्याल है कि नरगिस भी इस फर्क से आगाह नहीं थीं। जब शूटिंग के पहले दिन गोला मारकर नूरजहां विस्की पीने बैठ गईं। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में ज्यादातर अदाकारा कोठे या पारसी थिएटर से होते हुए सिनेमा के पर्दे तक पहुंचा करती थीं। नूरजहां भी उसी पीढ़ी की अदाकारा थीं। जिन्होंने अपनी एक्टिंग की बजाय आवाज के लिए नाम कमाया था। मंटो के शब्दों में कहा जाए तो उनकी आवाज कयामत खेज थी। मंटो अपनी किताब में नूरजहां के साथ एक ऐसी महफिल का जिक्र करते हैं जब नूरजहां शूटिंग के पहले दिन ही सेट पर जाने की बजाय उनके साथ बैठकर विस्की के घूंट भर रही थी। हालांकि मंटो इस महफिल में इत्तेफाक से पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद जो वाक्या उस महफिल में पेश आया वो बहुत दिलचस्प था। हुआ यूं कि उस समय नूरजहां को बॉम्बे आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। इससे पहले लाहौर में रहने के दौरान उन्होंने फिल्म खानदान के जरिए काफी शोहरत हासिल कर ली थी। बॉम्बे आने पर फिल्म प्रोड्यूसर V.S. व्यास ने उन्हें अपनी एक फिल्म में काम दे दिया। फिल्म की शूटिंग का पहला ही दिन था और नूरजहां सेट से गायब थी। इधर मंटो किसी काम से अपने दोस्त रफीक गजनवी के घर पहुंचे। वहां पहले से महफिल चल रही थी। गजनवी के अलावा इस महफिल में मौजूद थे नूरजहां के मैनेजर निजामी, अनुराधा और नूरजहां। चारों लोग बैठकर विस्की पी रहे थे कि फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ थे परेशान हाल श्रीमान व्यास। उन्होंने फोन पर नूरजहां के बारे में पूछा तो निजामी के इशारे पर अनुराधा ने साफ मना कर दिया। थोड़ी देर में महफिल परवान चढ़ी। नूरजहां से गाने की मांग होने लगी। सोफे पर बैठी नूरजहां हारमोनियम लेकर ठुमरी गाने लगी। बोल थे मेरे नैन काजर बिन कारे। वो गाने में मशगूल थी और इधर व्यास की कार घर के पोर्च में दाखिल हो चुकी थी। व्यास की आमद के बारे में जानकर एक बार सबके हलक सूख गए। निजामी ने धीरे से नूरजहां से कहा कि वो पेट पकड़कर लेट जाएं। व्यास जब कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने नूरजहां को दर्द से कराहते पाया। नूरजहां के मैनेजर निजामी ने बड़ी बेचारगी के साथ व्यास को बताया कि नूरजहां औरतों वाली तकलीफ झेल रही हैं। ये बात चल ही रही थी कि तभी अनुराधा किचन से गर्म पानी की बोतल ले आई। व्यास के पास कोई चारा नहीं बचा और वो भन्नाते हुए वहां से चले गए। मंटो लिखते हैं, यह था जीते जागते 100% हकीकी ड्रामे की झलक। सेठ V.S. व्यास के जाने के बाद सबकी जान में जान आई जब मंटो ने अशोक कुमार को दादा मुनि कहना शुरू किया। अपनी किताब में मंटो अशोक कुमार को अपना जिगरी दोस्त बताते हैं। अशोक कुमार के हवाले से उनके पास दर्जनों किस्से हैं जिसमें उनके असफल प्रेम और फैंस के बीच घिर जाने के ब्यौरे मौजूद हैं। मंटो एक जगह जिक्र करते हैं कि अशोक कुमार और मंटो उम्र में कौन बड़ा है के सवाल पर बच्चों की तरह झगड़ पड़े थे। मंटो के मुताबिक एक बार अशोक कुमार ने उन्हें हिदायत दी कि वो उन्हें दादा मुनि कहकर बुलाया करें। इस पर मंटो ने ऐतराज जताते हुए कहा कि वो अशोक कुमार से ज्यादा उम्र दराज हैं। मंटो लिखते हैं, दोनों की उम्र का हिसाब किया गया, वो मुझसे 2 माह और कुछ दिन बड़ा निकला। चुनांचे मुझे उसे अशोक या मिस्टर गांगुली की जगह दादा मुनि कहना पड़ा। ये मुझे पसंद भी था क्योंकि इसमें बंगालियों की महबूब मिठाई रसगुल्ले की मिठास और गोलाई थी। वो मुझे पहले मिस्टर मंटो कहा करते थे। जब उससे दादा मुनि कहने का मुआहदा हुआ तो वो मुझे मंटो कहने लगा। यह अजीब बात है कि मंटो किताब में जहां अशोक कुमार को अपना अजीज दोस्त बताते हैं, वहीं अशोक कुमार एक मौके पर उनको पहचानने से भी इनकार कर चुके हैं। मंटो को लेकर अशोक कुमार के इस भुलक्कड़पने का जिक्र हमें मिलता है दूरदर्शन के पत्रकार रहे शरद दत्त के लेख में। BBC पर छपे इस लेख में शरद कहते हैं कि मंटो के गुजरने के सालों बाद उन्होंने अशोक कुमार को इंटरव्यू किया था। जब उनसे मंटो के साथ उनके रिश्ते के हवाले से सवाल पूछा गया तो पहली बार में उन्होंने किसी मंटो को पहचानने से ही इनकार कर दिया। फिल्मिस्तान और बॉम्बे टॉकीज के दिनों की याद दिलाने पर उन्होंने सपाट लहजे में कहा, वो शराब बहुत पीते थे और अश्लील कहानियां लिखते थे। अशोक कुमार ने मंटो के बारे में जो कहा वो उनके बारे में सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला बयान है। हालांकि ये इंटरव्यू मंटो के जाने के कई साल बाद हुआ था, लेकिन मंटो ने अपने जीते जी इस किस्म के इल्जामों को झेला था। वो कहा करते थे, जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे वाकिफ नहीं हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए, और अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। फिर भी अशोक कुमार ने मंटो की याद जिस तरह से बोदा किया उससे बेहतर था कि वो उन्हें भूल ही गए होते।